इशिका और अभिमन्यु केशव के घर पर डिनर के लिए आए हुए थे। राधिका भी वहीं पर मौजूद थी। केशव की आंखों में राधिका के लिए जो नाराजगी थी वो साफ जाहिर हो रही थी। उसके बावजूद वो इशिका की खुशी के चलते वहां पर बैठी हुई थी। राधिका अब तक बिल्कुल शांत थी, लेकिन जब उसे पता चला कि केशव ने इशिका और अभिमन्यु के डिवोर्स पेपर्स भिजवाए हैं तो वो दंग रह गई। अब तक उसे इस मामले में कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इशिका ने केशव के सामने खुद ही साफ कर दिया था कि वो अभिमन्यु के साथ खुश है। इशिका की खुशी के चलते केशव उनके तलाक की बात को भूलने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि अभिमन्यु घर जमाई बनकर रहे। अब राधिका से और शांत नहीं रहा जा रहा था। वो अपनी जगह पर खड़ी हुई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको हमेशा अपने गुस्से में चीजें बर्बाद ही करनी होती हैं? जब दोनों बच्चे आपस में खुश हैं तो बीच में घर जमाई बनाना या तलाक जैसी बातें आ कहां से रही हैं आपके दिमाग में? ये मेरे और मेरी बेटी के बीच का मामला है मिसेस सिंघानिया, आप चुप रहेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी इतने सालों से मेरी बेटी की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर थी, क्या मिला? पहले इसे बदल दिया गया? मुझे तो ये तक पता चला है कि उस औरत ने इशिका को एक बार बेच दिया था। केशव ने दांत पीसते हुए राधिका को जवाब दिया, वो पहले की बातें हैं, लेकिन अब सब सही हो गया है। अभिमन्यु की अपनी लाइफ है, वो राजवंश एम्पायर का सीईओ है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उसके सर पर है तो आप क्या चाहते हैं कि वो ये सब छोड़कर आपके घर आकर बैठ जाए? राधिका ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा। वो तो इस पर डिपेंड करता है कि उसे अपनी पोजीशन ज्यादा प्यारी है या फिर मेरी बेटी, केशव ने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और आगे कहा, बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है? लेकिन डैड, इशिका ने बीच में बोलना चाहा, लेकिन केशव ने उसे चुप करवाते हुए कहा, मेरा यकीन करो, ये फैसला भी मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही ले रहा हूँ। पहले मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो और उसकी फैमिली के लोग कैसे हैं ये तुम अच्छे से जानती हो। मैं ऐसे में अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे को लेकर कोई चांस नहीं ले सकता। केशव का कहना भी गलत नहीं था। राजवंश फैमिली कैसी थी ये उसने अपनी आंखों से देखा था। हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया इंटरेक्शन के दौरान वो इशिका को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। बहुत बार अभिमन्यु को इशिका से तलाक लेने के लिए भी प्रेशराइज किया गया। इशिका बिल्कुल चुप हो गई थी। न जाने क्यों अब उसे भी राजवंश फैमिली के बीच सेफ फील नहीं होता था। अभिमन्यु इन सब में बिल्कुल चुपचाप था। केशव ने आगे कहा, मैं मिसेज राजवंश से तुम्हें अलग नहीं करना चाहता, तुम चाहो तो उन्हें भी अपने साथ ला सकते हो। अगर आपका घर जमाई बनने के लिए और इशिका के साथ रहने के लिए मुझे आपके घर पर रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं राजवंश विला छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अभिमन्यु ने शांत लहजे में जवाब दिया। नहीं, तुम्हें सिर्फ राजवंश विला ही नहीं, राजवंश एम्पायर की पोजीशन को भी छोड़ना होगा। वैसे भी वो लोग तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से हटाना चाहते हैं, तुम खुद से वहां से रिजाइन कर दो। इशिका मेरी इकलौती बेटी है, सिंघानिया एम्पायर्स भी किसी भी मुकाबले में राजवंश एम्पायर से कम नहीं है। तुम मेरी कंपनी के सीईओ बन सकते हो और फिर तुम्हें बार बार कोई तुम्हारी पोजीशन से हटाने की साजिश भी नहीं करेगा। केशव ने पूरी बात अभिमन्यु के सामने रख दी थी। उनकी बातें सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई थी, तो वहीं इशिका भी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। एक बार के लिए अभिमन्यु राजवंश विला को छोड़कर इशिका के साथ रहने के लिए उनके घर पर आ सकता था, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन को इस तरह छोड़ना बच्चों का खेल नहीं था। ऊपर से वो राजवंश एम्पायर में सबसे ज्यादा शेयर्स का मालिक था। राधिका ने गहरी सांस ली। अब उससे उसका गुस्सा काबू नहीं हो रहा था। वो केशव पर तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया केशव, इशिका अकेले तुम्हारी बेटी नहीं है और ना ही वो कोई 5 साल की बच्ची है जो तुम उसकी जिंदगी में इंटरफेयर कर रहे हो। सीरियसली, तुम अभिमन्यु को कह भी कैसे सकते हो कि वो राजवंश एम्पायर को छोड़कर सिंघानिया एम्पायर्स ज्वाइन कर ले? वो कोई जॉब नहीं करता, वहां का सीईओ है। हाँ तो मैं भी इसे कोई जॉब नहीं दे रहा, अच्छी खासी पोजिशन देने के लिए तैयार हूँ, और इसे क्या चाहिए? केशव ने जवाब दिया। अब पूरा फैसला अभिमन्यु के ऊपर था। अभिमन्यु ने कुछ पल सोचने के बाद शांत और सख्त लहजे में कहा, सॉरी टू से मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है। तो फिर मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, केशव ने जिद करते हुए कहा। केशव बेवजह की जिद कर रहे थे, ये सोचकर अरमान उनके पास आया और बोला, चाचू, इशिका पहली बार आपसे मिलने के लिए आई है और आप ये सब करके उसे डरा रहे हैं, ऊपर से ये प्रेग्नेंट भी है। आप तो अभिमन्यु को इतना पसंद करते थे, फिर अचानक ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे आज भी ये पसंद है, लेकिन इसकी फैमिली का क्या करूं? मुझे यकीन नहीं है कि वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम इसका रास्ता निकाल दो, मैं अभिमन्यु को प्रेशराइज नहीं करूंगा, केशव ने कहा। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन निकाल दूंगा, तो आप भी प्रॉमिस कीजिए कि इसके बाद आप अभिमन्यु और इशिका को अलग करने की कोशिश नहीं करेंगे, अरमान ने भौंई उठाकर कहा और फिर अपना हाथ केशव के सामने कर दिया था। केशव ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखने के बजाय सिर हिलाकर कहा, पहले मुझे तरीका बताओ, उसके बाद प्रॉमिस करूंगा। वो इशिका को अब तक इसलिए परेशान करते थे क्योंकि वो किसी बहुत बड़े घराने से बिलोंग नहीं करती थी। अगर आप सबके सामने ये बोल दें कि इशिका आपकी बेटी है तो वो कभी उसे परेशान करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, अरमान ने सुझाव दिया। अरमान का बताया हुआ आइडिया अच्छा था, लेकिन कुछ भी करने से पहले केशव ने राधिका की तरफ देखा। ये सब इतना आसान नहीं था। अगर वो सबके सामने ये अनाउंस कर देते कि यशिका उनकी बेटी है, तो कहीं ना कहीं बात राधिका के चरित्र पर आती। वो उससे कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो राधिका की शर्मिंदगी का कारण नहीं बनना चाहते थे। अरमान का ये सुझाव सुनकर राधिका के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए थे। उसे भी लगा कि केशव इन सब के लिए हाँ कह देगा। वैसे भी वो राधिका से नाराज था। केशव ने गहरी सांस ली और ना में सिर हिलाकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। हालांकि मेरे साथ हमेशा अन्याय हुआ कि मुझे अपनी बच्ची के बारे में पता तक नहीं था। चाहूँ तो इसका बदला लेने में एक पल भी ना लगाऊं, लेकिन ये मेरी बेटी की माँ है और मैं इसे दूसरों की नजरों में नीचा नहीं गिरा सकता। तो फिर ऐसा करते हैं कि पब्लिकली अनाउंस करने के बजाय सिर्फ राजवंश फैमिली के लोगों को ये बता देते हैं, अरमान बोला। केशव ने उसकी तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में ऐसे स्टूपिड आइडियाज आते कहाँ से हैं? राजवंश फैमिली को पता चला तो वो फिर से मिसेस सिंघानिया और मेरे रिश्ते को लेकर अभिमन्यु को ब्लैकमेल करेंगे ताकि वो अपनी पोजीशन से रिजाइन करे। मैंने सब कुछ सोच समझकर ही डिसीजन लिया है। अच्छी बात है, अभिमन्यु इरिटेट होकर बोला। फिर उसने इशिका का हाथ पकड़ा और आगे कहा, राजवंश फैमिली हो या चाहे आप, कोई कितना भी जोर लगा लो, लेकिन मुझे इशिका से अलग नहीं कर पाओगे। हमारा रिश्ता अभी नहीं बना है, बचपन से है। आप लोग तो जानते तक नहीं, जब इशिका को किडनैप करके उस तहखाने में रखा गया था तब मैं उसके साथ था। तब से हम एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं, तो अब कैसे आप लोगों की जिद के चलते हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे? अभिमन्यु बिल्कुल सही कह रहा है डैड, इशिका ने अभिमन्यु का साथ देते हुए कहा। राजवंश फैमिली चाहे जितनी भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश कर ले, पर अभिमन्यु के सामने उनका पलड़ा हल्का ही रहा है। दूसरी बात, अब तो अभिमन्यु के पास और ज्यादा पावर आ गई है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मेरे पास में भी शेयर्स हैं, तो मुझे भी कुछ नहीं होगा।
इससे पहले कि केशव फिर से उन्हें रोके, इससे पहले इशिका ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया और उन्हें प्यार से सहलाते हुए कहा, जब मैं अपने कामों से फ्री हो जाऊंगी तब आपके पास रहने के लिए जरूर आऊंगी। हाँ, तब अभिमन्यु भी मेरे साथ आएगा, तो आपका उसे घर जमाई बनाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। इशिका ने बहुत चालाकी से बात को दबा दिया था। इतना कहकर इशिका उनसे अलग हो गई थी। केशव उसे समझाना चाहते थे, पर इशिका ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, आप बेवजह मेरी फिक्र कर रहे हैं। मेरे चारों तरफ आप लोगों की शील्ड बनी हुई है, तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अभिमन्यु हैं, माँ, दादी और अब तो आप भी हो गए। इशिका की बात खत्म होते ही अरमान ने तुरंत कहा, एक्सक्यूज मी, तुम भूल रही हो कि मैं भी हूँ। सिंघानिया फैमिली के लोगों को अभी तुम्हारे बारे में पता नहीं है, और हमारे बहुत से भाई हैं जो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं। हम सब हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी भी कोई बहन हो। बस यही वजह है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह सिंघानिया फैमिली में आकर रहने लग जाओ, केशव ने मायूसी से कहा। मैं अभिमन्यु से प्यार करती हूँ, मेरे लिए वो अपना घर छोड़ सकता है, लेकिन ये गलत होगा ना डैड? सोचिए, दादी कभी अपने घर को छोड़कर उसके साथ लंदन रहने के लिए नहीं आई, तो वो कैसे अब हमारे साथ रहने के लिए आ जाएगी? हम दादी को नहीं छोड़ सकते हैं, और वो बहुत प्यार करती है हमसे, इशिका ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा। केशव ने आगे ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि इस बार जवाब अभिमन्यु या कोई और नहीं बल्कि इशिका दे रही थी। वो कुछ भी कहकर इशिका को हर्ट नहीं करना चाहते थे। अपना ख्याल रखना, और कोई भी प्रॉब्लम आए, तुम्हें कोई परेशान करे तो बस एक कॉल करने की जरूरत है, तुम्हारा डैड तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ जाएगा, केशव ने इमोशनल होकर कहा। इशिका ने जैसे तैसे अपनी समझदारी से उस बहस को निपटा दिया था, और फिर वो अभिमन्यु और राधिका के साथ राजवंश विला जाने के लिए निकल गई। वहीं उनके जाने के बाद अरमान ने मुस्कुराते हुए केशव से कहा, हमारी इशिका कितनी समझदार है ना चाचू? वो इशिका से मिलकर बहुत खुश था। हाँ, जितनी समझदार है उतनी ही मासूम भी। आज अभिमन्यु और उन सबको मेरी बातें बेफिजूल लग रही होंगी, लेकिन देखना, वक्त साबित कर देगा कि मैं बिल्कुल सही हूँ, और राजवंश फैमिली के लोग कभी नहीं सुधर सकते। बस उम्मीद है कि वो मेरी बेटी को नुकसान ना पहुँचाए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे मेरे सामने अभिमन्यु ही क्यों ना खड़ा हो, केशव ने सर्द आवाज में कहा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए थे। उनका ये रूप देखकर अरमान को हमेशा से डर लगता था। वो भी मन ही मन दुआ कर रहा था कि राजवंश फैमिली में इशिका के साथ कुछ भी गलत ना हो, पर होनी को कौन रोक सकता था। अभिमन्यु और इशिका की गैर मौजूदगी में उर्वशी उनके कमरे में गई थी। उसके हाथ में इशिका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। तो अभिमन्यु बाप बनने वाला है, अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर से मेरे बेटे का हक मारा जाएगा और सब कुछ उनके नाम कर दिया जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अभिमन्यु की फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ेगी। वो लड़का हमेशा अनाथ रहेगा। उससे मैं उसका सब कुछ छीन लूंगी, उर्वशी ने गुस्से में कहा और रिपोर्ट्स को क्रश करके वहीं फेंक दिया था। गलत टाइम पर गलत लोगों के हाथ सही चीज लग जाती है। सोचा नहीं होगा कि केशव इतनी जल्दी सही साबित हो जाएगा। खैर, क्या कह सकते हैं, देखते हैं अभिमन्यु और ऋषिका इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलते हैं। चलिए, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।